તારીખ 14/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 61.
गौण होता है तो क्या होता है? लगता है कि जैसे उसका छेद हो जाता है, व्यवच्छेद में विशेष रूप से छेद हो जाता है। अभाव अभाव कैसा, जैसे जैसे परद्रव्य है ही नहीं, पर वास्तव में तो परद्रव्य आत्मा में है ही नहीं। अगर कोई जीव अपने ज्ञान में केवल अपना ज्ञान का ही बात लेता है तो दूसरा स्वाद उसे कहां से आएगा? मात्र ज्ञान का स्वाद लेने का उद्देश्य है अपने आप में, सिर्फ ज्ञान अपने आप को ही देखता है, जानता है, अनुभवता है, तो बीच में दूसरा तो कोई वहां है भी नहीं, कहां से आएगा? तो कहते हैं कि वहां तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान अन्य को जानता नहीं है। वहां कहां, जहां केवल ज्ञान को ही ज्ञान में जानता रहता है, वहां स्वयं ज्ञान, स्वयं ज्ञाता, स्वयं ये हो जाता है। इसलिए जो ज्ञान रस के रसीले जीव हैं, उनको तो व्यवच्छेद हो जाता है, परद्रव्य का संयोग का व्यवच्छेद हो जाता है। और ऐसा व्यवच्छेद होने पर भी, होने पर से एकाकार ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आनंद समेत होने लगता है। उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर, केवल आत्मा का अनुभव करने से, दूसरा वहां नहीं होने से, दूसरे का अनुभव वैसे ही वस्तु के स्वरूप में करने का तो कोई संभव भी नहीं है। दोनों भाव एक है, शब्द अलग अलग है। ज्ञान केवल ज्ञान का अनुभव करे और ज्ञान केवल आत्मा का अनुभव करे तो आत्मानुभूति हो, ज्ञानानुभूति तो होती है। ये तो प्रस्तावना करके बात चली है कि जो ज्ञानानु आत्मानुभूति है वही ज्ञानानुभूति है। आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति कोई अलग अलग चीज नहीं है। और ज्ञान में आत्म स्वभाव है कि नहीं है, ज्ञान में अकेला पर्यायत्व को हम लक्ष्य में क्यों लेते हैं? जब ज्ञान में स्वभाव भी है तो स्वभाव को गौण करके या स्वभाव का व्यवच्छेद करके हम अकेले पर्यायत्व को क्यों लक्ष्य में लेते हैं? ऐसी गलती हमें क्यों करनी चाहिए? स्वभाव भी वहां है, पर्यायत्व भी है, समझ लो। सर्व पर्यायों में एकाकार ऐसा कहेंगे, इसमें ही कहेंगे, जैसे पंडित कहेंगे, सर्व पर्यायों में एकाकार, सर्वगुणों में एकाकार, ऐसा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को मुख्य करना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण तत्व है।
स्त्री गाथा का आधार तो यही है, सुंदर है स्त्री गाथा का आधार, उसी को लेकर आगे बढ़े।
हाँ, वो उसमें एकत्व की सुंदरता है, सुंदरता है, महानता है, अद्भुत महानता है। महानता क्या है? अद्भुत महानता है। ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है, परमोत्कृष्ट तत्व है। इसलिए उसको गौण करना, इसका व्यवच्छेद करना, ये तो नितांत भूल है। ज्ञान कहते ही ज्ञान की पर्याय ध्यान में आ जाती है। इसलिए ज्ञान मात्र में न द्रव्यत्व का भेद लेना है, न गुणत्व का भेद लेना है, न पर्यायत्व का भेद लेना है। ज्ञान मात्र में आचार्य महाराज यही कहना चाहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का भेद को छोड़ दो,
भेद का निषेध किया है।
ज्ञान मात्र कहने पर ही पारमार्थिक जो तत्व है हमारा स्वरूप, कोई सीधा लक्ष्य में आना चाहिए। पर द्रव्य संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर फिर ज्ञान का क्यों कहेंगे? आत्मा का ही कहेंगे, ज्ञान का भेद भी क्यों छाटेंगे? आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण आत्मा ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। क्यों? स्वाद तो ज्ञान का ही आएगा। वेदन करना, आस्वाद करना, ये ज्ञान का धर्म है, वही स्वाद में आएगा। पर उसमें मात्र ज्ञान नहीं, उसमें आत्मा ऐसे स्वाद में आता है। क्यों? कि आत्मा सर्वतः विज्ञान घन है, ज्ञान से इतना भरा हुआ घनिष्ठ पदार्थ है कि इसमें दूसरे का कोई प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं है। गणेश पदार्थ का गुरुदेव दर्शन देते थे, नहीं देते थे, वो जो गाढ़े के दिन में घी जम जाता है ना, कौन सा घी अभी जो अभी बाजार में मिलता है वो नहीं, असली घी, वो इतना जम जाता है, इतना जम जाता है कि अगर कोई नाखून से उसको उखाड़ने को जाएगा तो उंगली में उसको लग जाएगा, कितना हार्ड होता है वो घी। हमारे गुजराती में उसको फांस कहते हैं, जैसे शरीर जाती है जैसे घी की फांस लग जाती है, इतना फिर ज्ञान घन कहे, आनंद घन कहे, कुछ भी चैतन्य घन कहे, कुछ भी कहे, पदार्थ जो है सो है। तो सर्वतः ऐसा विज्ञान घन होने से ऐसा भरा भरा लगना चाहिए। क्या हमारा जो आत्मा है वो ज्ञानानंद से भरा 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 हुआ, लबालब भरा हुआ ऐसा लगना चाहिए? विचार में नहीं लेना है, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए विचार में, तो उसका आस्वाद आएगा, तो संवेदन रूप से उसका आस्वाद आएगा। ज्ञान का ज्ञान में वेदन है, यह वेदन आविर्भूत होने से उसको संवेदन कहते हैं, और स्वयं के रूप में वेदन आने से उसको स्वसंवेदन कहने में आता है, ऐसे स्वाद में आता है। इसलिए ज्ञान विशेष को इतना तिरोभूत करना है तो फिर राग को और अन्य पदार्थ को तो मुख्य करने का सवाल ही पैदा होता नहीं है। ये तो ज्ञान के पीछे क्यों में खड़े हैं, काट दिया ज्ञान विशेष से उसको, पूरी क्यू को काट दिया, खत्म कर दिया। भगवान यहां आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। इस गाथा में आचार्य महाराज ने आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। क्यों? अगर ज्ञान की अनुभूति नहीं है, एक तर्क कर ले, तर्क लड़ाते हैं कि ज्ञान के अनुभव को छोड़ करके आत्मा की अनुभूति हम करें तो, ज्ञान का अनुभव को छोड़ करके आत्मानुभूति कोई चीज होती है क्या? तर्क लगाए हो ही नहीं सकता। आत्मानुभव का दूसरा कोई तरीका वही चीज। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही लुप्त हो रहे हैं, ज्ञेयों में इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं। क्यों लुप्त हो रहे हैं? अनादि से जीव का उनका निश्चय है कि अनेक प्रकार के पंचेंद्रिय के विविध विषय हैं, उसमें सुख है, उसमें सुख का भास होता है, वो सही नहीं होने से उसको आभास कहने में आता है। ज्ञान के विषय होते हैं, ज्ञान के विषय तो होते ही रहते हैं, क्योंकि ज्ञान में इतनी स्वच्छता है तो उसका प्रतिबिंब तो आए बिना रहेगा नहीं। हाँ, और अगर वो ज्ञान के विषय नहीं होंगे तो उससे विज्ञान करने का कोई प्रकार भी उत्पन्न होता
नहीं,
तो विज्ञान नहीं होगा तो अनुभूति होने का भी सवाल नहीं रहता। अनुभूति तो विज्ञान पूर्वक होते हैं, और विज्ञान तो पर का राग का निषेध करके होता है, पर निषेध तब होता है कि जब वो विषय होता है तो निषेध होता है, विषय नहीं होता है तो निषेध होने का सवाल पैदा नहीं होता। और अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषय में लुप्त हो रहे हैं, तो बिना ज्ञान लुप्त हो रहे हैं क्या? कैसे लुप्त हो रहे हैं? जान करके लुप्त होते हैं या नहीं जान करके लुप्त होते हैं? जब अज्ञान अवस्था में भी इंद्रिय विषय रूप परम को जान के उसमें लुप्तता होती है, तो ये मेला ज्ञान में भी वो जानना होता है, तो निर्मल ज्ञान में जानना बंद हो जाता है ज्ञान
ज्ञान
का। बात तो है ही लुप्त हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि वहां सुख का निश्चय, गलत निश्चय, भूल वाला निश्चय अनादि से जीव करके बैठ गया है, और वही निश्चय उसका चला आ रहा है। इसलिए तो गुरुदेव कहते थे, तो बार बार गुरुदेव के वचन याद आते हैं कि तुझे जिसमें सुख का भास हो रहा हो, इसका कोई पुद्गल चीज है, पुद्गल पदार्थ है, और वो अनेक अनेक पुद्गल परमाणु का खंड रूप में है, तो उसके एक एक परमाणु को तू देख ले कि कहाँ सुख भरा है, सुख है क्या वहां। जैसे सोना है, तो सोने के एक एक परमाणु में कहाँ सुख है उसको अलग अलग करके देख। अलग अलग करके मैंने क्या है कि एक एक परमाणु को इतना ध्यान से देख के कहीं सुख भरा है क्या,
कहीं तो मिल गया है।
तो एनालिसिस करते कि नहीं करते? जैसे खून का एनालिसिस करते हैं, जो उसमें ल्यूकोसाइट कितना है, व्हाइट सेल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, वो कितना है, वो कितना है, डिप्रेशन काउंट काटते हैं कि नहीं काटते? तो एक परमाणु में सुख कहाँ है वो तुम खोज करो, उसके कहीं सुख है क्या। अगर सुख वहां नहीं है तो तेरा निश्चय गलत नहीं है क्या? ये निश्चय जहां तक बदलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कम से कम खोज करके तेरे निश्चय में दरार तो पड़नी चाहिए। हाँ,
ज्ञान में भी सुख नहीं, उसमें तो सुख नहीं, उसके ज्ञान में भी सुख
नहीं। हाँ, कलुष्टि का में पहले कलुष्ट में
पहले
परद्रव्य में तो सुख नहीं, लेकिन परद्रव्य को जानने वाले को भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां खिंचाव होता है, लुब्धता होती है, दुख उत्पन्न होता है। सुख तो नहीं होता है, दुख की उत्पत्ति होती है उसमें। ऐसा वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार सुख की खोज करें तो जो अनादि का जो सुख का निश्चय है उसमें दरार पड़ जाएगी,
करना वही
तो दरार पड़ेगी तो टूट जाएगा वो निश्चय, क्योंकि निश्चय भी बहुत दृढ़ किया है, जल्दी से मिटता नहीं है। पदार्थ आते ही उसको सुख की झलक आने लगती है। कहते हैं कि जरा ध्यान से सावधान होकर के जागृत होकर के देख तो सही कि सुख कहाँ है, तो पता चल जाएगा यहाँ सुख नहीं है, मेरी भ्रांति है और ये भ्रांति के वसाद ही मैं दुखी होता हूँ, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कोई और द्रव्य का संयोग वियोग नहीं है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग दुख का कारण प्रसिद्ध रूप से माना जाता है, फिर भी ऐसा नहीं है। क्यों? कि वहां से न सुख आता है न दुख आता है, कोई भी चीज यहां से नहीं आती। कल्पना करता है कि सुख दुख की कल्पना वहां कर लेता है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुप्त हो रहे हैं, वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ये मात्र आस्वादन करते हैं। क्या करते हैं कि उसको अनुभव तो होता है अनेकाकार ज्ञान का, लेकिन भ्रांति होती है कि मैं ये का अनुभव करता हूँ, ऐसी भ्रांति उसको हो जाती है, आश्रय हो जाता है। अनेकाकार ज्ञान आविर्भूत होने से जिस पदार्थ का ज्ञान होता है उसका आश्रय सहज रूप में हो जाता है। और वैसे वर्षा कौन वर्ष लेंगे कि अगर एकाकार ज्ञान का अनुभव किया जाए तो वो स्वभाव रूप होने से स्वभाव का आश्रय वहां सहज हो जाता है, स्वभाव का विकल्प किए बिना स्वभाव का आश्रय हो जाता है। यही स्वभाव का आश्रय करने की एक मात्र विधि है, दूसरी विधि नहीं है। ये गाथा का मूल विषय नहीं है। यहाँ तो अज्ञानी का दृष्टांत लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र रूप में आस्वादन करते हैं, ज्ञान को ज्ञेय रूप में आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते। जो ज्ञान ज्ञेय से सर्वथा भिन्न है, ज्ञान मैंने में, ज्ञान मैंने थर्ड पर्सन नहीं, मैं सर्व से सर्वथा भिन्न हूं, पूरा जगत से शून्य हूं मैं, पूरा जगत में कहीं मैं नहीं हूं, सर्वथा भिन्न हूं और मेरे से पूरा जगत शून्य है, इतनी भिन्नता है,
सर्वकाल भिन्न,
सर्वदा सर्वथा सर्व प्रकार से और एक समय के लिए भी अभिन्नता होती नहीं है। क्या कहा, इंद्रिय ज्ञान के विषय में अनेकाकार ज्ञान का भी ज्ञेय मात्र रूप से आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान है, तो ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान अकेला शब्द नहीं दिया, ज्ञान मात्र का अलग पढ़ दिया ने? तो ज्ञान मात्र कह के वहां पर्याय नहीं रही थे, न गुण भेद रहा न द्रव्य भेद रहा न पर्याय भेद रहा, जहां जहां समय सार में ज्ञान मात्र शब्द का प्रयोग है वहां अनुभव स्वरूप स्वभाव ले लेना, कोई भेद नहीं पार करके अनुभव स्वरूप स्वभाव को ग्रहण कर लेना। प्रश्न उठाए कृपालु देव का प्रश्न करने का या प्रतिपादन करने एक शैली है, बहुत सुंदर है, इसमें से प्रश्न इस शैली से उठा सकते हैं कि क्या स्वभाव को ग्रहण करने का कोई प्रकट प्रमाण है क्या, ये प्रश्न उठा सकते हैं। इस गाथा के अनुसंधान में, विषय के अनुसंधान में ये प्रश्न है कि जिस स्वभाव का आश्रय होने से ज्ञानानुभूति है, मृति है या आत्मानुभूति है, मृति है, जिसको यहाँ ज्ञान मात्र कहकर के पुकारते हैं, उस स्वभाव को ग्रहण करने का कोई प्रकट प्रमाण है क्या? ये प्रश्न जो तो मुद्दे का प्रश्न है, प्रयोजन रूप प्रश्न है, तो विषय अनुसंधान में इस प्रकार का होना चाहिए। है इसका भी प्रकट प्रमाण है। ज्ञान सामान्य रूप जो संवेदन है ज्ञान का, यही इसका प्रकट प्रमाण है। उतना ही नहीं, यह जो ज्ञान संवेदन है वो ऊर्ध्व रूप है, उसकी सातत्यता मैंने सतत रूप से है वो, और उसकी ऊर्ध्वता है, उसकी निर्लेपता है, और उसकी प्रत्यक्षता भी है और निर्मलता भी है। ये सभी पहलुओं से प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि ये स्वभाव को ग्रहण करने का यही एक प्रकट प्रमाण है, जहां से हम हमारे स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। फिर से जी तो स्वभाव ही है, पर्याय को क्यों लेते हैं ये तो हम प्रश्न के उत्तर है। प्रश्न तो कर दिया ना हमने कि ज्ञान मात्र कहते ही हम पर्याय को क्यों लक्ष्य में लेते हैं?
आदत पड़ गई है, हमें द्रव्य को पर्याय को,
पर्याय बुद्धि
एकत्व को, हमने एक जीव को पकड़ लिया, एकत्व को छोड़ दिया,
पर्याय बुद्धि होने से ऐसा हो जाता है। यहाँ वो कहना नहीं चाहते हैं, ग्रहण करती है वो पर्याय भले ही वो स्वभाव को ग्रहण करने वाली पर्याय अवश्य है, लेकिन ग्रहण किया जाता है वो स्वभाव है। तो कहां से, किस प्रमाण से वो ग्रहण होता है? कोई सबूत है क्या इसका, कोई प्रकट है? ज्ञान में जो ज्ञान का संवेदन है, जो प्रत्यक्ष रूप है, स्वयं सहज प्रत्यक्ष है, सहज स्वयं अंतर्मुख है, अकषाय स्वरूप होने से शांत है, और किसी से भी उसमें उसकी लेपाई मानता नहीं होने से वो निर्लेप है, निर्मल है, और हमेशा हमेशा विद्यमान होने से इसकी सातत्यता है, स्वभाव को ग्रहण करने का प्रकट प्रमाण है। हमारे पास ये स्वभाव को ग्रहण करने का प्रकट प्रमाण है।
देखो दृष्टि से बने में संतोष है, हिंदी में गलत गलती कर दिया है वास्तव में। क्या है संस्कृत? ज्ञान आत्मनोहो द्रव्यत्वेन द्रव्यतना से अभेदत्वात्। गुजराती में नहीं होता, किसी के पास गुजराती देख लेना समझता हो, तो वहाँ द्रव्यपना होगा, द्रव्य दृष्टि शब्द नहीं होगा। तीन नंबर है इसी सेवन है गुजराती में, 310 करीब होगा। यहाँ तो एक थोड़ा भी लक्ष्य होते कारण के ज्ञान में आत्मा के द्रव्यपणे अभेद है, द्रव्य दृष्टिपणे नहीं, द्रव्यपणे अभेद है। हिंदी अनुवाद में थोड़ी करती है, ये चर्चा है लक्ष्मण लक्ष्मण की चर्चा है हम लोग सुंदर आचार्य जो इंस्ट्रक्शन के बारे में पाए नहीं पूछते हैं 500 उसके बाद जो है 47 शक्ति का प्रारंभ होता है। इसके बाद 47 शक्ति का प्रारंभ होता है, सबसे आगे जो कलश है 263 फुट बढ़ता है। 263 के बाद रक्त रक्षण की चर्चा उठाई है, बाद 47 शक्ति का प्रतिपादन है, फिर 264 कलश है। अभेद है वेदानुभाव द्रव्यपण से अभेद है, तो वहां द्रव्यपण उसका देखना है, वहां हम भेद देखना नहीं। अभेद का द्रव्यपण कहो या अभेद का कहो उसी बात है, तो हो गया तेरे को जिसका करना था वो हो गया। फिर तो क्या है कि सहानुभूति होती है तो समय दर्शन प्रकट हो जाता है, उसी काल में समयांतर में नहीं होता है, उसी समय में सहानुभव के समय में ही समय दर्शन होता है और सहानुभव के समय में ही स्वरूप आचरण रूप लीनता भी होती है स्वरूप में, तो स्वरूप लीनता को ही शुद्ध आत्मचारित्र कहने में आता है, ये निगराज चारित्र है। अविरत सम्यक दृष्टि होने पर भी उसको विकराग चारित्र होता है, ऐसा चारित्र होता है तो विकराग चारित्र है, क्योंकि वहां मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग का तीनों अंग एक साथ होता है, मोक्ष मार्ग अंगी है, इसका दर्शन ज्ञान चारित्र के अंग है, एक भी अंग से खंडित मोक्ष मार्ग नहीं होता है, मोक्ष मार्ग सदा ही खंडित ही होता है। अज्ञानी देव यानी संवेदन से स्वभाव का वेदन नहीं करते, आस्वादन नहीं करते, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी है मतलब देवों में आसक्त नहीं है, क्यों देवों में आसक्त नहीं है, क्योंकि देव में कहीं सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं, न देवों में ज्ञान भी है न देवों में सुख भी है, इसलिए हमारा मतलब नहीं है, हमको तो सुख से मतलब है, वहां सुख नहीं है तो हमें उसको कोई आसक्त होने का कारण नहीं रहता। और जो ज्ञानी है देव में आसक्त नहीं है, वे देवों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद लेते हैं, देवाकार ज्ञान का आस्वाद नहीं लेते हैं, देवों से भिन्न एकाकार ज्ञान का आस्वाद लेते हैं, अनेकाकार का आस्वाद सामान्य ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं, एकाकार ज्ञान का ही आस्वादन करते हैं, अनेकाकार ज्ञान का आस्वादन नहीं करते, व्यवचन करते हैं इसका, तो क्या अनेकाकार देहाकार ज्ञान का तो व्यवचन कर देते हैं, स्वाद में नहीं लेते, जैसे नमक का स्वाद देने से मृत का व्यवचन कर दिया, खटाई का स्वाद का व्यवचन कर दिया, तभी अच्छी तरह मालूम पड़े कि सारापन कितना है, अगर उतना अच्छी तरह से मालूम नहीं करे तो फिर पूरा मिला हुआ स्वाद उसका आस्वाद होगा, तन्मय होते ही स्वाद लिया जाता है, अगर तन्मय नहीं होए तो स्वाद में कैसे लिया जाता है, कोई ले सकता है क्या? एकाकार ज्ञान का ही आस्वाद में कहीं जाने, वैसे शाखा से भी नमक की डली का सार मार्ग स्वाद आता है चखने पर, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है तो आत्मा है, सॉरी अवेक्षा को स्थापित करते हैं, तो ज्ञान है तो आत्मा है, दिशन जी प्राप्त हो प्रकाश में ऐसा कहते हैं कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां में आत्मा, ऐसा दृढ़ भाव ही सम्यक्त्व है। चलिए, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, आत्मा मैंने में ऐसा दृढ़ भाव ही सम्यक्त्व है। तुमने तुमको कितना आसान कर दिया है, बहुत सरल शैली में इस अनुभव का दृश्य लिखा गया है, बहुत सरल शैली में
ज्ञान का
ये द्रव्य पर्याय वाला भेद का लफड़ा बहुत नुकसान करता है। द्रव्य पर्याय में इतने फसे इतने फसे तो निकालना मुश्किल हो गया। एक तो भेद भेद बुद्धि में आना जैसे खड़ा है, उसमें आत्मा का द्रव्य पर्याय के भेद में उसको दृढ़ कर लिया भेद बुद्धि को, तब उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। क्योंकि जो ज्ञान है तो आत्मा है और जो आत्मा है तो ज्ञान है, हमें तो ज्ञान आत्मा ही लगता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप लगता है, हमें तो दूसरा इसमें कोई भेदभाव लगता नहीं है। इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में, भेद वाली दृष्टि में नहीं, गुण और गुणी की ज्ञान गुण है, लोग आत्मा गुणी है, फिर गुण गुणी का भेद हमको साधना नहीं। इस प्रकार गुण गुणी की भेद दृष्टि में आने वाला सर्व परद्रव्यों से भिन्न, गुण गुणी की अभेद दृष्टि में कैसा आता है, तो सर्व परद्रव्यों से भिन्न और अपने पर्यायों में एक रूप में, चल पर्याय में पर्याय रूप में है, क्योंकि पर्याय पर्याय अनेक रूप है, पर्याय चलित रूप है, निश्चल नहीं है, जबकि मैं मेरा स्वभाव रूप से सर्व ज्ञान की पर्यायों में एक रूप निश्चल हूँ। बुद्धि पर्याय होगा समाज सर्व पर्याय, जितने पर्याय प्रदर्शित है उसे बजाना हूँ, एक नंबर से पर्याय बदल के जाए थे हूँ बदला तो पर्याय परिक्रमण करती है, मैं यूं का यूं रह जाता हूँ। पता नहीं करना बदल तो चर्चा करते थे तो एक खास ये बात बार बार आते थे कि परिणाम परिणमन पर्याय परिणम रहा है, परिणमन कर रही है, मैं तो यो का यो रह जाता हूं। तो यो का यो कौन रहता है, तो जो एक रूप निश्चल स्वभाव है, जो अपना स्वरूप है, तो एक रूप रह जाता है। मैं परिणमन के प्रभाव के साथ में बैठा, मैं नहीं बैठा, जैसे कोई तो प्रवाह में छीका डाल दिया तो प्रवाह चलता रहेगा, छीका ही माता रह जाएगा, ऐसा मेरा स्वभाव तो ध्रुव छीका है तो विपरीत नहीं होता। अगर सर्व पर्यायों में नहीं होता तो उसका पाना मुश्किल हो जाता, ध्रुव के लिए सिद्धि नहीं होती, उसकी प्राप्ति नहीं होती, कभी उसका अवलंबन आने जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, उसका विकल्प कितना भी किए जाओ विकल्प तो विकल्प ही है। निर्विकल्प स्वानुभव में तो विकल्प का पर्दा अंतराय रूप है, भले ही वो आत्मा का विकल्प हो लेकिन वो अंतराय है। इस प्रकार गुण भूमि की अभेद दृष्टि में आने वाला सर्वकर्तृत्व से भिन्न अपने पर्यायों में एक रूप निष्कल, अपने गुणों में भी एक रूप, अनेक गुणों में अनेक रूप नहीं, अपने गुणों में एक रूप होना है, इसमें पीलापन है, वजन है, चिकनापन है, लेकिन सोना कहते ही सोने का एक रूप जो है ज्ञान में आता है। सोने की जितनी विशेषताएं हैं, उसकी चमक है, जो भी जितनी विशेषताएं हैं, ये सोना है इतना कहने से ही वो सभी विशेषताओं का एक विशिष्ट ज्ञान में खड़ा हो जाता है। ऐसे आत्मा को ज्ञान कहते ही, आत्मा कहते ही या किसी भी शब्द से कहते हैं, तो एक रूप आत्मा अनेक विशेषताओं का जिसमें विलीन पड़ा हो गया है, ऐसा एक विशेष ज्ञान में खड़ा हो जाना चाहिए। अपने यहां ये बात प्रैक्टिकल अनुभव में है, जो आदमी को हम अच्छी तरह जानते हैं इसका कोई ना कोई नाम तो होता है, तो उस नाम से हम बात करते हैं तो उसकी विशेषताओं के भेद प्रभेद में ज्ञान को ले जाना पड़ता है क्या? तो नहीं ले जाना पड़ता है, नाम से हम हमारा व्यवहार करता है, ये किसकी बात करें फलाना ठीक समझ गया, उसकी कोई विशेषताओं को विचार किए बिना पूरे उसकी गुण से ज्ञान में आ जाती या नहीं आ जाते जिसका नाम लेते हैं उसके। जैसे गुरुदेव से गुरुदेव शब्द दे रहे थे, पूरी उसकी पर्सनालिटी, उसके गुण, उसकी वाणी कोई विचार में लेना नहीं पड़ता, नाम से ही पूरी मूर्ति हमारे ज्ञान में आ जाती है कि नहीं आ जाती है, उसको मैच्योर नॉलेज कहने में आता है, जिसको सोचना पड़ेगा ऐसा फलाना तो ऐसा 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 था वो, तो ये मैच्योर नॉलेज परिपक्व ज्ञान जिसको कहते हैं, कि नाम मात्र से पूरा पता चल जाए, एक शब्द में पूरा पदार्थ ज्ञान में आ जाए, उसको ज्ञान की परिपक्वता कहते हैं। और उसका द्रव्यगुण पर्याय में जाना पड़े तो समझना चाहिए ज्ञान परिपक्व नहीं है, तो निर्णायक ज्ञान नहीं है, तो अनिश्चित ज्ञान और निर्णायक ज्ञान है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल हम भी अनुभव करते हैं कि नहीं करते, व्यवहार में ऐसा अनुभव होता क्या नहीं होता है, व्यवहार में तो होता है, वहाँ प्रश्न क्यों नहीं करते? तो वो तो जाना पहचाना हुआ था इसलिए होता है, इसकी ध्यान पहचान नहीं हुए इसलिए नहीं होता है, वहाँ प्रश्न क्यों नहीं करते? ठीक, जैसे गुरुदेव को जाने पहचाने थे इसलिए इसका नाम आने से उसकी गुरु के ज्ञान में आ गई, लेकिन आत्मा को तो हमें जाना पहचाना नहीं है, तो ज्ञान कहने से पूरा आत्मा ज्ञान में कैसे आ गया हमको, ये प्रश्न आप क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहचाना नहीं हो तो पहचानो, हम ना देते हैं आपने नहीं पहचाना है, बात सही है कि नहीं पहचाना, इसलिए आपके ज्ञान में ज्ञान मूर्ति आत्मा नहीं आता, तो पहचान तो पहले यही कर्म से भी है और क्या है, करोगे भगवान के वाणी होने पर भी नहीं माने तो फिर ये हमारी कर्म से मिल सकता है, सबको तो मिलती नहीं है ये वाणी, ये चीज सबको मिलती है क्या? ये 600 करोड़ की आबादी है विश्व के, 590 करोड़ करीब समझे, उसमें ये चीज किसको मिलती है, कितने को मिलती है, मुट्ठी भर लोगों को इन्हें गिने को तो मिलती है, फिर भी हम विश्वास नहीं करें। जिनको मिलती है वो तो उसको मिली नहीं मिली दोनों में क्या फर्क रहा, जिसको नहीं मिली और जिसको मिली इसमें क्या अंतर रहा, इससे इससे बड़े अफसोस की कौन सी बात होगी, जिसको नहीं मिली वो अपराध करते हैं वो क्षम्य है, जो जिसको मिली फिर वो अपराध करते हैं वो अक्षम्य है, ऐसे बात है, तो बड़ा गुनेगार है। जैसे कैसे भी कोई बंदे का खड़ी हो जितनी है उतनी, अपनी दुनिया में एक रूप निष्ठल, अपने गुणों में एक रूप स्वभाव और पर निमित्त से उत्पन्न हुए भाव जो विकारी भाव है, जो पर निमित्त से उत्पन्न होते हैं या अपने जिसमें कर्म का निमित्त बना गिना जाता है, उससे भी भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव, ज्ञान का अनुभव है, अपने स्वरूप का अनुभव माने ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव मेरे स्वरूप का अनुभव है, उसका अनुभव ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान के अनुभव को अनुभव से समझो तो ये स्वरूप का अनुभव है, दूसरी कोई चीज है। ज्ञान में स्वपना, ज्ञान खुद को अनुभव करता है, दूसरे कोई गुण का अनुभव करता नहीं है, तो खुद का अनुभव करे मतलब आत्मा का अनुभव करे, स्वयं का अनुभव मतलब ज्ञान का ज्ञान, मैंने स्वयं का ज्ञान, मैंने आत्मा का ज्ञान, बस बात खत्म, उसमें कोई फिर तर्क की गुंजाइश नहीं। ये ज्ञान का अनुभव है और यह अनुभव भावभूत ज्ञान रूप जीन शासन का अनुभव है। कितनी महत्ता है इसकी, कि जितनी महत्ता समस्त जीन शासन की है, सारे जीन शासन की जितनी महत्ता है उतनी महत्ता ज्ञानानुभव की है। हाँ, सत ज्ञान भाव सत ज्ञान रूप है ये, और ये समस्त जीन शासन की है। तो क्या कसर रखे उसे समस्त जिनशासन कहकर के, तुम खुद आचार्य देव ने कौन सी कसर रखी है ये बताइए, तो महिमा करने में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी हम इसमें अपेक्षा लगाते हैं, ये छोटा संस्थान वाला है, सुखा संस्थान वाला है, तेरवा संस्थान वाला है, अरे समस्त जिनशासन है, जहां अनुभूति है वहां समस्त जिनशासन है, आचार्य महाराज का पढ़ना है, उसमें कोई गड़बड़ करने वाली नहीं, शुद्ध में से इसमें कोई भेद, शुद्ध ज्ञान से देखा जा, शुद्ध में से देखा जा, उसमें कोई अंतर नहीं,
जहां भेद है वहां शुद्ध में है ही नहीं,
जहां कुछ भी अपेक्षा लगा दी वो भेद मैंने अपेक्षा लगा दी, उसको जिन शासन नहीं कहे उसको कुछ स्वतंत्र स्थान वाला कह दे, अगर उसे कह दे तो कहते हैं कि उसको कुछ समझ में आया, आचार्य महाराज जो कहते हैं वो समझ में आया, फिर आचार्य महाराज महिमा करते हैं स्वामी होते हैं, तो फिर मनुष्य को कितनी होनी चाहिए, कोई श्री राशि तो है, छठे सातवें संस्थान में रहने वाले महान आचार्य स्वानुभूति को समस्त जीन शासन कहते हैं, जीन शासन का अंत नहीं बोले, जीन शासन संभव संभव शब्द लगाया है, अनुभव बोले अंत रूप है, लेकिन फिर आज उनका
कहीं गया कुछ करने का बाकी रहा है, कहा ही नहीं
कहेगा तो ऐसी महिमा आएगी तो हमारा प्रसाद उसी से और लगेगा, अगर इतनी महिमा नहीं आई तो प्रसाद से उठने वाला नहीं।
Thank you.